بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب مصحف ریکارڈ کر رہے ہیں. کتاب کی مصنفہ ہیں نمرا احمد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0306 7878 222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. یونائٹیڈ بک سینٹر, شاپ نمبر 10, ناظم آباد, اردو بازار. اسلامک جنرل ہسٹری, قرآن, اردو لٹریچر, میڈیکل ٹیکنیکل اسکول کالج اینڈ اسٹیشنری, بکس اینڈ اسٹیشنری, ہوم ڈیلیوری سروس. بلال, فون نمبر 03442502141, واٹس ایپ 03350253706. نام کتاب مصحف, مصنفہ نمرا احمد, خواتین ڈائجسٹ, 37 اردو بازار, کراچی. جملہ حقوق محفوظ ہیں. بار اول سن 2012. ناشرین خواتین ڈائجسٹ پریس, پرنٹ لائن. قیمت 400 روپے. سول ایجنٹ مکتبہ عمران ڈائجسٹ, 37 اردو بازار, کراچی. سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی. کندھے پہ بیگ لٹکائے, ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے, چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی. اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی. پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے دوسرے ہاتھ سے بوتل کھول کر لبوں سے لگا لی. گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی, صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا. جانے آگے کیا ہوگا, وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی. چہرے پہ بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو. سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی. کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا. لمبے کرتے اور جینس میں ملبوس, رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھے, وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے. ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا. محمل ابراہیم, محمل ابراہیم, محمل ابراہیم. آڑا ترچھا, چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا. وہ لڑکی کبھی کبھی اس کے بیگ کو دیکھ لیتی تھی مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سے آف عام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے. وہ بھی عجب پرسرار کردار تھی. یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی. سر پر رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گھرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ, موٹے ہونٹ, سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں. کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی. ہمیشہ نگاہ چراتی. شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ دیکھتی تھی اور ان 1.5 ماہ میں ان کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا. مگر سیدھے رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی خاموشی سے سامنے سیٹ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی. اور پھر اس کی وہ پرسرار کتاب, سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سر ورک بالکل خالی تھا. اس کی گود میں دھری ہوتی اس کی کتابوں پہ, کتاب کے کناروں پہ اس کے سیاحات مضبوطی سے جمے ہوتے. اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا. किताब की हिफाजत का एहसास या शायद उसके बेश कीमत होने का। किताब बालिश भर मोटी थी, सफों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई बहुत कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था उसमें, कोई कदीम राज, कोई पुरसरार कथा। वो जब भी इस किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ, वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज कर रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो, सियाफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी, मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है। वो चंद लम्हे महमल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा, वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे जमानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से त्याजिल पर हाथ फेरते कह रही थी। उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ी और उसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसे तो किसी ने मेरे लिए ही लिखवा कर इधर रखा था। महमिल मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की लड़की हो, इस कदीम जबान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी। मगर ये है क्या? इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब उसे परेशान कर रहा था। मेरा माजी। उसी पल हॉर्न बजा तो महमिल ने चौंक कर सामने सड़क पर आती बस को देखा। मेरा हाल, वो सियाफाम लड़की कह रही थी। महमिल बैग का स्ट्रैप पकड़े खड़ी हुई, उसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था। और मेरा मुस्तकबिल भी, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ, वो बस की तरफ देखते माजरत ख्वाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है महमिल, वो उल्टे पैरों मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शिष्टर ही तो रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूं, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तब ही दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज हॉर्न फिर बचा। वो कुछ कहे बगैर तेजी से उस तरफ लपकी। रॉड पकड़ कर ऊपर चढ़ते उसने पल भर कर पलट कर देखा था। वो सियाफाम लड़की इसी तरह मुस्कुरा रही थी। पुरसरार मायनी फेस मुस्कुराहट महमिल को एकदम उसे बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते उसे रोज 3:30 हो जाते थे। गेट उबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कराह कर रह गया। घर में गाड़ियों की कतार के बावजूद वो बसों के धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चचाओं के रहम करम पर पलने वाले यतीमों की नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना, वो खुद पे तरस खाती अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान, उसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से वापस लौट आए थे और उनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता था कि पत्ता भी ना खड़के वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बजाय पूरे घर को और दर हकीकत महमिल और मुसरत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम ताई महताब इन अल्फाज का इजाफा करती, और मुसरत जरा अपनी बेटी को समझा देना कि जब लू शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन डोर आराम से खुला करे, आगा साहब की नींद खराब होती है। अब मैं कुछ कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा। गज भर की तो जबान है उसकी, न छोटे का लिहाज न बड़े का अदब। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, उनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमिल के, वगैरह वगैरह। उसे तो आग ही लग जाती थी। हर रोज दरवाजा खोलते ही यही फकरा समात में गूंजता तो चढ़ने के बावजूद दरवाजा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। नागावारी से नाक चढ़ाए उसने बैग से लेपर रखा और हॉट पॉट की तरफ भरी। सुबह नाश्ते के बाद से अब तक कुछ न खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हॉट पॉट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जरे बिखरे थे। उसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। मेहताब ताई उसके आने से कब्ल फ्रिज लॉक कर देती थी। मुसरत उसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रखती थी, मगर जब से मेहताब ताई ने खाने की खुद निगरानी शुरू की थी, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता था। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर से जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट उबूर करके कॉलोनी के बाहर वाले नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब लेके आई कि इतने ही पैसे थे। वापसी पे वो फिर से पुरानी महमिल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा खोलकर धड़ाम से बंद किया, फर्श पे पड़ी फुटबॉल उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पे मारी और सोफे पे टांग रख के बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और तनतनाती हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमिल वो गर्जी तो उसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शायद आप हजार दफा कहा है कि आराम से दरवाजा खोला करो, मगर तुम आहिस्ता बोले ताई अम्मा, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पे कबाब रखकर पांव झुलाती बेनियाजी से खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके? मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई महताब तिलमिलाती कुलस्ती रह गई। अंदर मुसरत आवाजों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ महमिल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? दिमाग खराब है उनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? उसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रख दिया। मगर हुआ क्या है? उनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पे गई। फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, ये तुम खाओ, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमिल ने लम्हा भर माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफेद हुए बाल और झुरियों ज्यादा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेजरर सी माँ, जो वाकई सालिशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती थी। दिल बुरा मत किया करो महमिल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो, मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे अम्मा। भारताई मेहताब के बोलने की आवाज बराबर आ रही थी। अब वो शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। ना शुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है, एहसान नहीं किया। मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है महमिल, वो अब कहीं भी नहीं है, वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देख कर रह गई। फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था, कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुकमे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज्जत खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठाक की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाज बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी, वो बुरा सा मुंह बनाए जमाही रुकती उठी, स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटते हुए दरवाजा खोला। इसका और मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुलिका स्टोर रूम था, बहुत छोटा न बहुत बड़ा। अरसा पहले इस काठ कबार से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। उसके साथ बाथरूम ना था, इसलिए उनको लाउंज पार करके गेस्ट बाथरूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नाइमा चची के छोटे मास और मुइस फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज नहीं है तुम लोगों को, देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चची फौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सोना है, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ू या फोड़ू मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमिल थी। सारे हिसाब फौरन चुका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। उधर नाइमा चची बड़बड़ाती रह गई। मुंह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी टेल उस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। उसकी आंखें कांच से सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी उनको दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलती हैं ये सब। उसे हंसी आ गई। एक नजर खुद पे डाली, जींस के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह एक पल्लू सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नगेट्स निकाल कर मुसरत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। उस पे नजर पड़ी तो नगेट्स रखते हुए जरा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसरत, अब हर कोई तो बाहर से मुंह मार कर नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कह के कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। जबान को संभालो लड़की, तौबा है हमारी बेटियां तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसर्रत ने एक मुलतजी निगाह महमिल पर डाली। वो कंधे उचका कर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। उस पे एक तनफुर भरी निगाह डालकर ताही मेहताब बाहर चली गई। नाइमा चची पहले ही जा चुकी थी, अब मुसर्रत और महमिली किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे अम्मा। धो भी दूं तो क्या है, उनके एहसान कम है हम पे। वो मसरूफ थी एक एक करके नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमिल ने गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़कर सिंह की तरफ मुतवज्जा हुई। उसे मालूम था कि अगर वो ना करेगी तो मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी उन लोगों पे जरा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर पारी हुई तो मुसर्रत ट्रॉली भर चुकी थी। महमिल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज शाम की तरह कुर्सियां लगी थी। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे, साथ ही मेहताब ताई और नाइमा चची बातें कर रही थी। नाइमा चची सबसे छोटे चचा असद की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गफरान चचा और महमिल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम उनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। उसे ट्रॉली लेकर आता देखकर मुस्कुराई। अरे महमिल जान, तुम अकेली लगी रही, निदा या सामिया को कह दिया होता तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चची नाइमा और महताब की तरह जबान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब ये मिठास अपने लबों से दूसरों के हलक में उंडेलती तो वहां कांटे उगाते थे। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुरा कर ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे जो अब करती। अगर वो उन्हें बुलाती तो वो फौरन चली आती, एक दो चीजें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बघरती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। उसके बाद लॉन में फिजा चची सबको एक एक चीज, ये चखें मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती। इस पे मेहताब ताई उनकी तारीफ तो न करती, मगर मुसर्रत और महमिल को कहली कि वो ताने मिलते के सारे फसीहे से बचने को महमिल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी। मगर फिजा चची की ये मीठी जबान ही थी कि ना वो भी उनको पलट कर जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी थी, वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती, कम अज कम आपको हम माँ बेटी पर चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेजी से कह के ट्रॉली वहीं छोड़े वापस चली गई। सब बातें छोड़कर इधर देखने लगे थे। एहसान करने का तो जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुरा कर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई, आखिरी सीढ़ियां उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पर घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, चाय लाती हूँ। وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا. محمل نے رک کر لمحے بھر کو اسے جاتے دیکھا. وہ تائی مہتاب کا بڑا بیٹا تھا. حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرہ اور مہرین سب سے چھوٹی تھی. فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا. اونچا لمبا خوش عقل تو تھا ہی مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا. خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی. ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چچی کی مغرور نخریلی آرزو سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی. رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہے. فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا. سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھی مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا. اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اطراحت کم نہ ہوتی تھی اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی. ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا اور نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی. تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑتی رہتی تھی مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا. نالائک نکما ایف اے میں دو بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول سگریٹ کا عادی اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی. وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی. ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی. ان سے کچھ کہنا بیکار تھا. اس نے ٹرے اٹھا لی. لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا. وہ اسے مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا. محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا میرے کپ میں چینی مت ڈالنا. نہیں ڈالی. وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی. ارے بیٹا چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی. یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنے تو اسمارٹ ہو اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی. چستا سفید ٹراؤزر اور اوپر قطرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی آم سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قطرے پرکشش بنایا تھا مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی. پھر تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل یہ کباب پکڑانا. فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئی. وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی. وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا. محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. وہ پلیٹ پکڑے جب تک اسے دیکھ رہا تھا چونک کر سب کچھ بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو. بس لمحے بھر کا عمل تھا. اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا. فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھی. کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی. ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی. سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی اور وہ کانچ سے سنہری آنکھیں. ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا تو کچھ بھی نہ تھا. چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی. پھر مغرب ڈھل گئی تو وہ کچن میں آ گئی جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی. کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا. اماں یہ تائی اماں اور چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہال گئی تھی. تو ہمارا گھر ہے بیٹا, میں یہ کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں, تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی. اچھا بتائیں کیا بنانا ہے, میں کچھ کروا دوں. بریانی تو بنانی ہی ہے, باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں. اور اس پل मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना अब शुरू भी कर दो मुसरत, रोज देर हो जाती है। मुसरत चूल्हा जलाते फौरन पलटी, जी भाभी बस शुरू कर रही हूँ, आप बताएं। बिरयानी का वसीम बेटा कह गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पूछती उनके सामने जाकर पूछने लगी, साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अरबी गोश्त भी गर्म कर लेना, आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद रायता भी ना भूलना जी, और मीठे में देख लो। वो बेनियादी नहुत से कहती मुस्कुराई, पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर, और एक उचटती निगाह उस पे डालकर पलट गई। एक टाइम पे देखते भर भर के आप तीन तीन चार चार डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कुलस्ती भी थी और हैरान भी होती, तुम खुद ही तो कहती हो कि वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा। उनके लहजे में बरसों की थकन थी, और कह के वो फिर से कटिंग बोर्ड पे झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई वाकई, क्योंकि यहाँ देखते के देखते एक वक्त के खाने पे खत्म हो जाते थे। उसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही ना था, और अम्मा भी उनके हर जुल्म और ज्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सहे जाती थी। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 वर्ष कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियां, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाजार में कपड़े की एक दुकान चलाते थे। गफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरजू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, निकट्ठू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चेलम के बाद वो अपने अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आन भसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, तीन मंजिला आलिशान महलनुमा कोठी थी। निचली मंजिल पे आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बलाई पे फिजा चची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी खत्म ना हुए। बात बे बात जगह की कमी का रोना जाया, रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से सरत और महमिल को निकाल कर स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त बहुत छोटी थी, शायद 9-10 बरस की, मगर जैसे जैसे शौर की मंजिलें पार की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ उसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर जबान बंद ही रखती, मगर ताई चचियों से बराबर का मुकाबला करती, और कजन तो किसी खाते में न थी। लेकिन इस जबान चलाने के बायस उस पर सख्तियां बढ़ती गई। वो महज जबान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब से उसने अपने जाती जेब खर्च के लिए एक दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन देनी शुरू की थी, उसको घर वापसी में देर हो जाती, और नतीजतन या कस्तन उसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफा अम्मा एक रोटी और सालन की रोटी बचाकर कमरे में ले गई, मगर ताई महताब की निगाह पड़ ही गई और घर में पहुंचा लिया गया। वो बातें सुनाई मुसरत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्जाम और अलकाब से नवाजा के मुसरत फिर कभी उसके लिए कुछ न बचा सकी। शायद ताई ये सब इसलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे, और जो 1500 रुपया उसे ट्यूशन से मिलता है वो उसे ना मिला करे। और ट्यूशन की इजाजत भी तो कितनी मिन्नतों से उसे मिली थी। जब सबके सामने ही उसने पूछ लिया तो शुरू में तो सभी अखड़ गए, लेकिन उसका फकरा के ठीक है आज यकुम तारीख है, लाइए आगा जान मेरी पॉकेट मनी निकालिए। मगर वो इतनी ही हो जितनी सिदरा और महरीन बाजी को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी ना मिली तो मैं सिदरा और महरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और वो पहली दफा इतनी जनूनी होकर बोली थी कि मजीद 10 मिनट की बहस के बाद उसे इजाजत मिल ही गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिलाया कि वो लोग उनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकी कि कुछ ऐसा जरूर है आगा जान कि आगा जान इस 20 साल लड़की से खायफ हैं। अगर कभी जो वो अपना हिस्सा मांगने खड़ी हो जाए तो क्या उनका केस इतना कमजोर है कि वो अदालत का फैसला अपने हक में ना करा सकेंगे, और उन्हें हर चीज महमिल के हवाले करनी पड़ेगी। और क्या वो 20 साल लड़की इतनी बाहिम्मत है कि उन सबको, इन शतरंज के इतने माहिर और चालबाज खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पर नचा सके। जो अब एक जवाब एक जोरदार नहीं था, वो कभी भी उनके खिलाफ उठ खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर कभी उसके हाथ उनकी कोई कमजोरी लग जाए, कोई दुखती रग जिसे दबाकर वो अपने सारे हिसाब चलता कर सके तो कितना मजा आए। मगर ऐसी दुखती रग हो सकती थी उनकी। बात सुनो, मेहताब ताई ने फिर से किचन में झांका तो अपने ख्यालात की बहती रौ से चौंकी। फवाद कह रहा है मीठे में चॉकलेट सोफले होना चाहिए, यूं करो अभी साथ साथ शुरू कर दो, और हाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने किसी खास मीठे की फरमाइश की है। बहुत मानो फखर और तनबी परे अंदाज में कहकर वो पलट गई और महमिल के जहन की भटकती रौ इसी एक नुक्ते पर मुंजमेद हो गई। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 में सुनिए।